તારીખ 30/1/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 280 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 223A
પ્રશ્ન 280 પેજ 160 अनुभव ज्ञान ज्ञान से उद्धार है तो क्या किसी को अनुभव हुआ हो और उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो तो भी चल सकता है? पूछने वाले का वजन है शास्त्र ज्ञान पर। कहाँ वजन है? शास्त्र ज्ञान पर वजन है। शास्त्र ज्ञान भी अनुभव के लिए करना है तो अनुभव हो गया तो शास्त्र ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं रहती। और शास्त्र ज्ञान का कोई रहस्य है? शास्त्र ज्ञान का कोई जीष्ट है? वो तो अनुभव है। शास्त्र ज्ञान में व्यवहार और निश्चय दोनों से बात चलती है। इसमें जो मक्खन है वो तो अनुभव है, बाकी तो छास है। तो जिसको मक्खन मिल गया उसको छास की क्या जरूरत? शास्त्र ज्ञान कितना भी हो, अंग पूर्वों का कितना अंग पूर्वों का शास्त्र ज्ञान हो, अनुभव ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान ऐसा नाम नहीं पाता, अज्ञान ऐसा नाम पाता है। इतना महत्व अनुभव ज्ञान का है, लेकिन पूछने वाले को शास्त्र ज्ञान का महत्व है ऐसा दिखता है। समाधान, अनुभव ज्ञान में शास्त्र आ जाते हैं। शास्त्र का जो कोई रहस्य है, परमार्थ है, वो तो स्वानुभव है। तो जिसको स्वानुभव हुआ उन्होंने तो सब शास्त्र पढ़ लिए, उनको कोई शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। राजमल जी लिखते हैं कि स्वानुभूति हुई उनको कोई शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। अनुभव जिसको हुआ वो मोक्ष में जाएगा, नियम से जाएगा जाएगा और जाएगा। शास्त्र ज्ञान करने वाले मोक्ष में जाएंगे ऐसा नहीं है, तो अभवी भी करते हैं। 11 अंग तक तो अभवी भी करते हैं, और भव्य 11 अंग 9 पूर्व तक करते हैं मिथ्या दृष्टि। तो शास्त्र ज्ञान का उतना कोई मूल्य है ही नहीं। अनुभव ज्ञान में शास्त्र आ जाते हैं। शास्त्रों का जो रहस्य है, रहस्य शब्द का प्रयोग किया है, शास्त्रों का जो रहस्य है वह अनुभूति में आ जाता है। वो तो अनुभूति में आ जाता है। और तिर्यंज कहाँ पढ़ते हैं शास्त्र? तिर्यंज पंचम गुण स्थान का श्रावक हो सकता है, चाहे गाय हो बैल हो, पंचम गुण स्थान तक जा सकता है। तो शास्त्रों का रहस्य है वो तो अनुभूति में आ गया, तथापि बीच में शास्त्राभ्यास किया हो तो वो हानिकारक नहीं है। तो क्या है कि वो अपने अनुभव की पुष्टि करेगा। मनुष्य हो और शास्त्र का अध्ययन करे तो उनको कोई ज्ञानी को नुकसान नहीं होता। नीचे के गुण स्थान में उपयोग भीतर में बहुत कम रहता है, उपयोग बाहर तो जाएगा ही जाएगा, नहीं चाहे तो भी। तो फिर उपयोग कहाँ लगाना उसका विवेक करते हैं ज्ञानी, कि इधर उधर जाएगा तो नुकसान होगा संसार के विषयों में, और शास्त्र में जाएगा तो अपने अनुभव पुष्टि मिलेगी, आत्मरस को पुष्टि मिलेगी। क्योंकि शास्त्र क्या है कि शांत रस रहस्यमय वाक्य जिसमें है, ऐसे शास्त्र है। तो आत्म शांति का जो रस है उसको उसमें पुष्टि मिलती है। उसे कदाचित शास्त्र के विशेष शब्द न आते हो, विशेष शब्द ज्ञान नहीं हो, मन सकता है अनुभव हो इसलिए शास्त्र के अर्थ सब समझ सके, ऐसी बात ऐसा सिद्धांत नहीं है। शास्त्र के गाथाओं के अर्थ नहीं भी समझ सके इसलिए कोई अनुभव ज्ञान नहीं है, तो बात नहीं है। रहस्य तो उसके उसको परिणमन में है, पकड़ने की बात क्या है, रहस्य तो खुद परिणमित गया है। कोई शास्त्र की ऐसी गाथा हो बात समझ में नहीं आए, ऐसा क्षोभसम बहुत कम हो, ऐसे भी ज्ञानी होते बहुत क्षोभसम कम हो नहीं समझ सके। अरे पढ़े लिखे भी नहीं हो, अनपढ़ हो सकते हैं, अनुभव ज्ञान वाला अनपढ़ भी हो सकते हैं, पढ़े ही नहीं शास्त्र, पढ़ भी नहीं सके, और बहुत कम पढ़े हो तो अर्थ भी नहीं समझ सके। शब्द में तो कितने कैसे शब्द अनजाने आते हैं शास्त्र में, चालू भाषा के नहीं होते हैं। हाँ उनको तो कुछ याद ही नहीं रहते थे, केवल ज्ञान तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए, तो कौन सा शास्त्र बाकी रहा फिर। कि 12 अंग में जितने भी शास्त्र है पूरा श्रुत जो है वो केवल ज्ञान के आगे अनंत में भाग में है। कितने हैं, अनंत में भाग में से अनंत में भाग में है। कैसे, कि केवल ज्ञान पूर्वक दिव्य ध्वनि में जो ज्ञान प्रकाशित होता है वो अनंत में भाग में आते हैं, और दिव्य ध्वनि में जो ज्ञान प्रकाशित होता है वो 12 अंग में अनंत में भाग में है। तो बहुत कम है। तो जो केवल ज्ञान का कारण है इसकी महत्ता है, या ये शास्त्र ज्ञान तो उघाड़ ज्ञान है, वो तो बाह्य उघाड़ है। कैसा है, बाह्य का उघाड़ है। बाह्य सूक्ष्म का कोई मूल्य आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं है। संसार संस्कार, हाँ हाँ, संस्कार होने का कारण वो है, कोई ज्ञानी पुरुष का प्रत्यक्ष योग मिला हो और उसके आत्मा रस की बात सुनते आत्मरुचि तीव्र हो गई हो तब संस्कार आते हैं। उसमें कोई शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। Oh! उसे मैंने ज्ञानी को कदाचित शास्त्र कोई विशेष शब्द न आते हो तथापि उसमें शास्त्रों का रहस्य आ जाता है, अनुभव में शास्त्र का रहस्य आ जाता है। वो तो वहां से लिया है कि जिसको ज्ञानी गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम होता है उनको शास्त्र पढ़े बिना शास्त्र का भेद माने रहस्य उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। सब आगम भेद सूर वैसे, तो आगम का सब रहस्य है वो इनके हृदय में उर मैंने हृदय उसमें प्रकट हो जाता है। ऐसी लब्धि उनको होती है, वो लब्धि है। बिना पढ़े ज्ञान हुए इसका मतलब क्या हुआ कि लब्धि है। शास्त्र में कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि कर, शास्त्र में क्या कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि कर, भेद ज्ञान कर, शास्त्र पढ़ते हैं चर्चा करते हैं। तो शास्त्र में कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि कर, भेद ज्ञान कर तथा अनुभूति कर। क्या कहते हैं शास्त्र का आज्ञा क्या है कि तुम द्रव्य दृष्टि कर, भेद ज्ञान कर, स्वानुभव कर। तो जिसे अनुभूति हो गई उसमें उसे शास्त्र ज्ञान का रहस्य आ जाता है। पढ़ने वाले नहीं कर सकते हैं और कर सकते हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसी घटना हुई है। अब हम किसको पसंद करेंगे, पढ़ने वाले को या पढ़ने से जो काम करना चाहिए वो करने वाले को? किसकी महत्ता है? काम जिसको करना है इसकी महत्ता है। शास्त्र पढ़ करके अनुभव पद्धति समझ करके किसी ने अनुभव किया और किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ करके भी अनुभव किया तो महत्ता तो इसकी है। क्योंकि तुमको तो शास्त्र ने सिखाया तब तुम सीखे, हम तो बिना सीखे सीख गए, किसकी महत्ता है? जैसे किसी को टीचर सिखाते हैं और सीखता है और किसी को टीचर नहीं मिलते हैं और वो विद्यार्थी आगे निकल जाता है, ट्यूशन वाले से बिना ट्यूशन वाला अगर ज्यादा मार्क लाता है तो कौन होशियार है, कौन सा विद्यार्थी होशियार है, ट्यूशन वाला या बिना ट्यूशन वाला? ऐसी बात हो गई है। तो क्योंकि भेद ज्ञान द्वारा द्रव्य दृष्टि द्वारा ही अनुभव होता है, अनुभूति होती है। शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन भी उसमें आ जाता है। शास्त्र ज्ञान का वही प्रयोजन है, स्वानुभूति कराना वही शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन है। तो वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया माने प्राप्त हो गया। तो ऐसी बात हुई हमारे यहाँ, कभी घर में कोई व्यक्ति ऐसी होती है जो टिक 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 कच 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 बोल कुछ ने कुछ कमेंट किया ही करते हैं। तो घर में कोई भाई रोटी बना रही थी, रोटी बहुत बढ़िया बनाती थी, रोटला ऐसे पहले हाथ से घड़ते थे ना, हाथ से पहले रोटला करते थे तो उसका आवाज आता है। तो बोला कि भाई कैसे रोटला घड़ती, आवाज बराबर नहीं आता है क्या, ये कोई तरीका है रोटला घड़ने का? आवाज तो देखो ऐसा आवाज होता है क्या रोटला घड़ने वाले? तो भाई तुमको ये टप 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 होता है, वो टप टप से काम है या मम मम से काम है, उसका रोटला तुम खाओ, कितना बढ़िया तुम बनाती है। तो जो टप टप से जो बोलता है कि वो बराबर नहीं है, वो बराबर कमेंट उसका जो है वो ठीक नहीं है, तो अनुभव हुआ तो पूछता है शास्त्र ज्ञान है कि नहीं है, क्या जरूरत है, वो तो टप टप वाली बात हुई, तुमको टप टप से काम है या मम मम से काम है, मम मम मैंने खाना, तुमको खाना है तो रोटला तो बढ़िया बनता है, आवाज से तुम्हारा क्या लेना देना है। ऐसे अनुभव हो गया तो शास्त्र ज्ञान से क्या लेना देना है, शास्त्र ज्ञान से कोई लेना देना है ही नहीं। पारमार्थिक न्याय तो ऐसा है, देव गुरु शास्त्र के प्रति भी उपयोग बाहर निकल के जाता है तो उसमें भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए। देखो सुगानी जी ने वो बात लिखी की है क्यों, कि अपने परम शांत स्वरूप को छोड़ करके उपयोग बाहर गया, आकुलता हुई, नियम से आकुलता हुई, कितनी हुई कि बहुत हुई, पट्टी जैसे वो वचन है, वो आत्मशांति का द्योतक है। इसी बात पर तो विवाद हो गया हमारे यहाँ, किसी ने बोला कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, देव गुरु शास्त्र तो शांत रस परिणमित होते हैं, इनके प्रति उपयोग जाता है तो भी शांति का अनुभव होता है, वो तो विषय कसाई के मुकाबले में बात है, आत्मानुभव की जो शांति है उसके मुकाबले में वो बात है ही नहीं। आत्मशांति के मुकाबले में तो वो भट्टी जैसा दुख है ही, समय 85 काय की 172 गाथा है, उसमें सम्यक दृष्टि मुनिराज भावलिंगी संत 6वें 7वें गुण स्थान में विराजने वाले, वो केवल ज्ञान के लिए उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा क्यों ली, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसी भाव में जो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, नियम से वो मुनिराज का जीव देवलोक में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसको तो दूसरी गति होती ही नहीं, हल्की उच्च कोटि के देव होते हैं, वैमानिक देव होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं मुनिराज, सबसे ऊपर। क्या लिखा अमरचंद्राचार्य ने टीका करते हुए कि देव लोक में जाकर के, वहां तो आयुष बहुत बड़ा है, सागरोपम का आयुष है, बहुत लंबे काल तक बलबलते जल जलते अंगारे में सीखेंगे। क्या हो क्या क्या लिखा, बलबलता अंगारे में शेका से लिखा, क्योंकि किसी ने शास्त्र प्रमाण मांगा गुरुदेव से कि ऐसी बात सुगानी जी करते हैं लेकिन शास्त्र में कोई ऐसी बात आती नहीं, शास्त्र का क्या प्रमाण है, तो कहे 85 का 172 गाथा, चिरकाल पर्यंत બળબળતા અંગારામાં શેકાશે દેવલોકમાં. ઓર વહાં અવધિ જ્ઞાન હૈ દેવલોક મેં જો જાતે હૈ અવધિ જ્ઞાન સભી દેવો કો હોતા હૈ ઉસકો તો સમ્યક અવધિ જ્ઞાન હૈ કૈસા સમ્યક અવધિ ના તો ઉસમેં ઉસકો બરાબર સમજ મેં આ જાતા હૈ કે અરે મેં આગે કે ભાવ મેં છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાન વાળા ભાવલિંગી મુનિ થા ચતુર્થ ગુણસ્થાન મેં આ ગયા મુજે યહાં રહેના પસંદ નહીં હૈ અબ તો કબ મેરા મનુષ્ય ભવ હોવે ઓર ફિર મેં મેરી આરાધના કો બઢા કરકે કેવલ જ્ઞાન કો પ્રાપ્ત કરું. એ મનુષ્ય ભવ કી વાંછા કરતા હૈ સમ્યક દ્રષ્ટિ. સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવ મનુષ્ય ભવ કી ઈચ્છા કરતા હૈ. उनको देव भव के मुकाबले में मनुष्य भव प्रिय लगता है, इसलिए मनुष्य को संबोधन करते हैं ज्ञानी. अरे देवानुप्रिय तुम ये बात सुनो, तुमको कितना अच्छा भव मिला है कि देवों को जो प्रिय है, सम्यक दृष्टि देवों को जो प्रिय है ऐसा भव तुमको मिला है. ऐसा भव मिला है मनुष्य भव कि जो सम्यक दृष्टि देवों को प्रिय है ऐसा भव तुमको मिला है. देव चतुर्थ गुण स्थान से आगे नहीं जाते, मनुष्य तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है. गुरुदेव कभी कभी संबोधन करते थे, खास करके वो धनबाद वाले अमृतलाल भाई थे ना, उनको प्रश्न उठाते थे बार बार तो समाधान ऐसे देते कि सुनो देवानुपिया ऐसी बात है, ऐसा कहते थे. इसको देवानुप्रिया बोलते थे. देवों को अनुप्रिय है ऐसा मनुष्य पर उनको मिला है, लेकिन हमको कीमत नहीं है तो हम विषय कुसाई में फालतू चीजों में क्षुद्र पदार्थों में हमारा आयु व्यतीत कर देते हैं. भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या कहते हैं, शास्त्र का प्रयोजन भी उसमें मैंने अनुभूति में आ जाता है. और काम तो प्रयोजन से है, टप टप से काम नहीं है. भगवान की दिव्य ध्वनि में मुक्ति मार्ग आता है. भगवान की दिव्य ध्वनि में मुक्ति मार्ग आता है. सुगानी जी की बात बहुत इसमें याद आती है. वो शास्त्र तो पढ़े थे मुमुक्षु की भूमिका में, लेकिन उतना तो याद रहे नहीं. और ज्ञानी की भूमिका में शास्त्र पढ़ना उसका कम हो गया. बहुत वो अंदर के पुरुषार्थ में लगे रहे, उतने लगे रहे कि एक भाव बाकी रहे, उतनी निर्जरा कर दी गृहस्थ जीवन में. तो भी शास्त्र पढ़े हैं, विद्वत्ता आ जाए, पंडिताई हो जाए, प्रभावना हो सकती है. तो क्या बोलते हैं, बोले कि ये प्रभावना का राग को हम रोग समझते हैं. क्या एक ओर से हमारा शास्त्र ये बोलेगा कि सम्यक दृष्टि को आठ अंग होता है, वो नियम से उसको प्रभावना अंग होता ही है. एक न्याय वो भी है, वो व्यवहार कोटि का न्याय है. परमार्थ कोटि का न्याय में तो राग ही रोग है. क्या है, राग ही रोग है. चाहे कितना भी उच्च कोटि का शुभ राग हो वो भी एक रोग है. और स्वरूप में लीन होकर के आत्म शांति को भोगना वही निरोगता और तंदुरुस्ती है. आत्मा की तंदुरुस्ती तो वही है, आत्म शांति है. ऐसा बोलते थे. जितनी व्यवहार की बात है उनका निषेध आता है। परमार्थ की निश्चय की प्रधानता में जितने भी व्यवहार की बात है उसका निषेध आएगा, और बहुत कड़ा निषेध करते थे। इतना कड़ा निषेध करते थे कि हमारे गुरुदेव के निश्चय प्रधान उपदेश को सुनने वाले को भी झंझनाटे आ जाते थे, और कुछ लोग सहन भी नहीं कर सकते थे। ऐसे शास्त्र में सतदेव, सतगुरु और सतशास्त्र धर्म के आयतन बताए गए हैं। आयतन मैंने स्थान, आयतन मैंने स्थान, धर्मस्थान, धर्मस्थान देव गुरु शास्त्र। तो क्या बोले कि देव गुरु शास्त्र तो अनायतन है। क्या अनायतन है? रहने का स्थान धर्म में, रहने का स्थान तो मेरी आत्मा है, वो एक आयतन है, दूसरा कोई आयतन है ही नहीं। और वो स्वंगड़ी वही बात पर आए कि गुरुदेव का एक प्रवचन आत्मधर्म, जो पहला वाला आत्मधर्म मिला उसमें एक प्रवचन में वो बात थी कि श्रावक को 6 प्रकार का कर्तव्य होता है, उसको षट आवश्यक कहते हैं। अवश्य करने लायक कर्तव्य को आवश्यक क मैंने कर्तव्य, अवश्य करने लायक क्या कि देव पूजा, शास्त्र अध्ययन, दान, ऐसे 6 प्रकार हैं। गुरुदेव ने प्रवचन में ऐसे बोला कि षट आवश्यक है ही नहीं। सम्यक दृष्टि श्रावक को षट आवश्यक है ही नहीं, एक ही आवश्यक है। कौन सा? अपने स्वरूप में लीन होना, यही एक अवश्य करने लायक। वहां से उनको आकर्षण पैदा हुआ, अरे ये बात है स्वरूप में जाने की, ये सही बात है। इस सत आवश्यक में तो 6 विषय में उपयोग लगाना पड़ता है, शास्त्र में, पूजा में, दान में, एक ही आवश्यक है, उसमें आत्म शांति है। नव तत्वों को ज्ञान सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है तो कह नहीं, एक आत्म तत्व का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। नव तत्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि में मुक्ति मार्ग आता है, और अपनी अनुभूति हुई उसमें सब आ जाता है, वही मुक्ति का मार्ग है। भगवान की दिव्य ध्वनि में मुक्ति का मार्ग प्रकाशित हुआ, इस प्रकार से जीवों की मुक्ति होती है। कैसे? कि श्रद्धा से स्वरूप में लीन होना, ज्ञान से भी स्वरूप में अनुसंधान करना, और आचरण से भी स्वरूप में जम जाना, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तत्वार सूत्र, सूत्र जी का पहला सूत्र है, और वो उसने कर लिया अनुभव में, वो तीनों बात हो गई। बस भगवान ने जो कहा वही उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया। नायक स्वभाव को पहचानने से अनुभूति होने पर शास्त्रों का रहस्य उसमें आ जाता है। क्या है? अपने नायक स्वभाव को, अपने स्वरूप को पहचानने से अनुभूति होने पर, सीधी अनुभूति नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? पहचान से अनुभूति होती है। और स्पष्ट करें, कि हम नायक 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 की धुन लगाए तो अनुभूति होगी वो बात नहीं है, नायक की पहचान होगी तो सही रूप में ये धुन चलेगी और अनुभव होगा। तो एक बात अवश्य है कि अनुभव होता है उसको स्वरूप की धुन लगती है, लेकिन पहचान पूर्वक, बिना पहचान वो सही रूप में नहीं होती, क्योंकि बिना पहचान सही महिमा आती नहीं। और कृत्रिमता से कोई धुन लगाता है वो सहज नहीं है, और आदत बन गई और सहज हो गया तो वो भी सहज वास्तविक सहज नहीं है। तो जिसको पहचान होती है यानी स्वरूप निश्चय होता है उनको ही अनुभव होता है, दूसरे को अनुभव हो सकता नहीं है। ये बात समय सार की 144 गाथा में अमृतचंद्राचार्य ने खोली है, वहां शुद्धोपयोग की बात लिया है, पक्षांतिक्रांत हो करके किसको होता है कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, उसको लिया है, कारण लिया है। जैसे सम्यक दर्शन बिना मुनि दशा नहीं, मुनि दशा बिना केवल ज्ञान नहीं, वैसे स्वरूप निश्चय बिना किसी को स्वानुभव नहीं होता। और स्वरूप सत्पुरुष की पहचान बिना स्वरूप की पहचान नहीं होती, और पात्रता बिना सत्पुरुष की पहचान नहीं होती। मुमुक्षुता सही मुमुक्षुता ये बिना सत्पुरुष की पहचान नहीं होती। तो ये सब बात कारण कार्य के साथ जुड़ी हुई है और ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए वो बात कही है कि नायक स्वभाव को पहचानने से अनुभूति, बिना पहचानने से अनुभूति होती नहीं, होने पर शास्त्रों का रहस्य उसमें आ गया। भले ही शास्त्र नहीं पढ़ा हो, शिवभूति मुनि को केवल ज्ञान हुआ। युक्ति आगम अनुभव सब उसमें एक साथ आ जाता है। ठीक, युक्ति मैंने दृष्टांत से, दृष्टांत भी उसमें आ गया, आगम भी उसमें आ गया, और अनुभव तो अनुभूति स्वरूप ही है, अनुभूति तो अनुभूति अनुभव स्वरूप ही है, तो सब उसमें एक साथ आ जाता है। शास्त्र का ज्ञान वो तो बाह्य उघाड़ है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है, उसका क्या मूल्य है? मिथ्या दृष्टि को भी होता है, उसका क्या मूल्य है? यानी ऐसे लेते हैं कि ये तो पूर्व कर्म का क्षोभ है। जैसे पूर्व कर्म के किसी को बहुत पैसा मिल जाता है, श्रीमंत होता है या राजा होता है, पूर्व कर्म के योग से, ऐसे पूर्व कर्म के योग से ज्ञान का उघाड़ हो गया तो क्या हो गया? और संसार का वो उघाड़ संसार में जाएगा तो बम बनाएगा, हिंसक हथियार बनाएगा, उसका तो कोई मूल्य है ही नहीं। और वैसे ही पापियों के पास भी पैसे होते हैं, बहुत पापी करते हैं, जैसे स्लॉटर हाउस चलाते हैं, कत्ल खाने, और बहुत पैसे वाले होते हैं, इसका क्या मूल्य? जो पापियों के पास भी होता है इसका क्या मूल्य? इसकी तुच्छता हमको आनी चाहिए। इसलिए अभिप्राय में से बाह्य ज्ञान की महिमा उड़ा देनी चाहिए और किसी के भी बाह्य शास्त्र ज्ञान पर विमोहित नहीं होना। वो क्या कितना ज्ञान है, वो कितना ज्ञान है, कितना समझते हैं, कितना समझा सकते हैं, परमार्थ मार्ग में इसका कोई मूल्य नहीं है। तो शिवभूति मुनि की बात तो क्या, इधर भी शिवभूति मुनि कुछ नहीं जानते थे, उनको कुछ शास्त्र ज्ञान नहीं था। गुरु ने कहा तुष्मास भिन्न, वो भी भूल गए, तुष्मास भिन्न, मैंने चावल के, चावल है वो, तुष है तांडुल, उसके छिलके दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, छिलका भिन्न और तांडुल भिन्न। जो चावल है वही खाया जाता है, छिलका तो निकाल दिया जाता है। तो जैसे छिलका चावल पर लगा हुआ है चावल के आकार में, ऐसे तुम्हारी आत्मा और ये शरीर भिन्न है, आकार दोनों का एक सा है, जैसे छिलका और चावल, तो तुम्हारी आत्मा चावल है, चावल में मिठास है, छिलका में नहीं है, तो दोनों भिन्न है। तुम ये सब भेद ज्ञान करो, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। गुरु ने कहा तुष्मास भिन्न, वह भी भूल गए, उतना भी याद नहीं रहा। वहीं कोई स्त्री दाल और छिलके अलग कर रही थी, दाल या चावल और छिलके और दाल और छिलके है वो खानते नहीं, पहले तो घर में वो खाने में खानते थे, उस पर उन्होंने भेद ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर लिया। शरीर तो भिन्न है लेकिन शुभाशुभ भाव भी भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। गाढ़ ज्ञान नहीं था, विस्मृत होता, विस्मृत हो जाते थे, पढ़ी हुई बात सुनी हुई बात विस्मृत कर जाते थे, लेकिन जिष्ट पकड़ लिया, वेद ज्ञान का जो जिष्ट है वो पकड़ लिया, सार पकड़ लिया। सुगानी जी को भी ऐसा ही हुआ, गुरुदेव के प्रवचन में उसने एक बात को पकड़ी, राग ने ज्ञान जुदा छे, तो गुजराती में बोलते थे, उनकी नजर भावों पर थी, उनकी नजर भावों पर थी, तो उन्होंने भाव पकड़ लिया, भाषा की कोई दिक्कत नहीं हुई उनको, और ऐसा भाव पकड़ा कि वो भेद ज्ञान करने लग गए वहां से। उन्होंने परिणमन देखा, राग और ज्ञान का भिन्न भिन्न परिणमन गुरुदेव की परिणति में देखा, परिणति का दर्शन हो गया, उसमें भगवान आत्मा का दर्शन हो गया, अपने काम में अंदर में लग गए। भाषा तो छिलका है, भाव है वो माल है अंदर में, तो उनको भाषा की कोई तकलीफ नहीं हुई। दो महीने के बच्चा होता है वो भी अपनी माँ का आवाज पहचानता है, तो दूसरे का आवाज पहचानता है, वो कोई भाषा नहीं समझता, उनसे बात करते हैं, उसको जो खिलाते हैं तो छोटे बच्चे से बात करते हैं, तो वो तो कोई समझते नहीं भाषा को, लेकिन भाव को तो समझते हैं, प्रेम से बुलाते हैं तो हंसता है, और आंखें निकाल करके डांटते हैं तो रोता है। दो चार महीने का बच्चा का भी भाव पकड़ने का तो उसमें भी ताकत है, आठ साल तक तो पारमार्थिक प्रयोजन कोई मनुष्य नहीं पकड़ सकता, मिथ्या दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि ज्ञान लेकर आते हैं अलग बात है, बाकी जो जन्म से मिथ्या दृष्टि है वो आठ साल तक परमार्थ के प्रयोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन संगनी पंचेंद्रिय होने से भावों को पकड़ने की ताकत तो इतने छोटे बच्चे में होती है। तो भाषा का महत्व कहाँ रहा? कुछ नहीं रहा। हाँ, परसों बात चली थी, बोध दो प्रकार से, फर्स्ट टाइम वो बात चली। बोध दो प्रकार से है, वाणी द्वारा, शब्द द्वारा और परिणमन द्वारा। उसमें उत्कृष्ट बोध परिणमन द्वारा का होता है, क्योंकि ऐसी वाणी तो कोई सीख लेता है विद्वान, और जैसा ज्ञानी बोलता है वैसा ही बोलेगा वो, लेकिन उसके पास परिणमन नहीं है तो इसका कोई पारमार्थिक लाभ दूसरे को नहीं मिलता। और ज्ञानी की वाणी परिणमन सहित होती है, तो जो लाभ मिलता है वो वाणी का नहीं मिलता है, परिणमन का मिलता है। तो शब्द में झलक आती है, रस आता है, आत्मरस आता है, वो परिणमन के कारण से आता है। परिणमन वाला बोध उत्कृष्ट है, शब्द वाला बोध उत्कृष्ट नहीं है। बोध तो दोनों देते हैं। तो कृपालु देव ने 249 पत्र में लिखा कि ज्ञानी नहीं बोले तो इसका मौन से भी जो बोध मिलता है, यानी परिणमन से जो बोध मिलता है, इससे इस कारण से दूसरे जीव को स्वरूप स्थिति हो सकती है, संभव है, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा लिखा है। मौन से दूसरे को स्वरूप स्वरूप स्थिति मैंने शुद्धोपयोग स्वरूपलीनता आ सकती है, इतनी ताकत परिणमन में निमित्तत्व की है। इसलिए वो परिणमन वाला बोध है वो उत्कृष्ट है। क्यों? कि वो परिणमन में उस ज्ञानी जीव का स्वरूप संचेतन है। क्या है? स्वरूप संचेतन है। वो स्वरूप संचेतन वही जीव का जीवन है। तो वहां तो जीवन है, वाणी में कोई जीवन विवन नहीं है, वो तो जड़ है, वो तो मुर्दा है। वाणी तो, वाणी में कोई जीवन है ही नहीं, वो तो पुद्गलात्मक है, है? वो तो पुद्गल का परिणमन है। जीव का जीवन तो परिणमन में है, तो इसका बहुत बड़ा मूल्य है। जागृत चैतन्य ने चेष्टा तो खा भाव लिया। सत्पुरुष की हाँ, वो तो आवश्यक महसूस होनी चाहिए। बताने वाले ने तो बताई, लेकिन हमको महसूस होनी चाहिए कि ये जीवंत परिस्थिति हमको नया जीवन का कारण बन सकती है। भाषा नहीं, ज्ञानी की वाणी के ग्रंथ के ढेर पड़े हैं आज भी। कितने हैं? ढेर के ढेर पड़े हैं। इससे कोई ज्ञान हो जाता है ऐसी बात है ही नहीं। हाँ, वैसे ही क्या था, मैंने बोला कथा का अर्थ आता है, वो कोई ज्ञान नहीं है। मैंने प्रश्न किया, फर्स्ट टाइम परीक्षा किया था कि आपको ज्ञान हुआ है तो इस कथा का अर्थ कर दो, ना दे दिया, शास्त्र वापिस कर दिया। कथा का अर्थ आवे तो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है। ज्ञान तो सहानुभूति वाला होता है, बात बताई उन्होंने। तो वो दाल और छिलके अलग कर रही थी कोई स्त्री, उस पर से उन्होंने वेद ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर लिया और भीतर नायक में स्वरूप में उतर गए, तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जो भेद ज्ञान उन्होंने मुनि दशा में किया उसमें कोई स्त्री का निमित्त पड़ गया, दार और छिलका भिन्न भिन्न होने में भेद ज्ञान की उग्रता हो गई, अनुभव तो था ही, केवल ज्ञान लीन हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने अर्थ ग्रहण कर लिया, अर्थ मैंने भाव ग्रहण कर लिया, अर्थ का होता है भाव, अर्थ का अर्थ होता है भाव, अर्थ का क्या अर्थ होता है भाव, जैसे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय आकार को कहते हैं, क्षेत्र की पर्याय, अर्थ पर्याय ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भावों को अर्थ पर्याय कहने में आती है। गुरु ने जो कहा था उसका रहस्य ग्रहण कर लिया, उसमें सब शास्त्र आ गए, कोई शास्त्र बाकी नहीं, बारह अंक का सार आ गया, बारह बारह अंक का सार आ गया। तो जिसको अनुभूति हुई, राजमल जी तेरहवें कलश की टीका में लिखते हैं कि उसको शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है।